प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 45। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं, सुर सुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करूहु नर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीरने वणिशेष तीर्थंकरने सौ सिद्ध शुद्धा सित्वने मुनि ज्ञान दृगचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणी हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारि हंतने अरहंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरयने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने कसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनी जे नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 19 पर हम आ गए, 19। हाँ, नीचे से दूसरा ही लाइन यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ केवल ज्ञानी की बात चल रही है, केवल ज्ञान की। तो कहते छद्मस्थ को इंद्रियों की जरूरत तो है न, समाधान, छद्मस्थ को इंद्रिय निमित्त होती है, निमित्त की उपस्थिति है, परंतु जानना तो जीव के अपने से होता है, उन्हें यानी केवल ज्ञानी को अब निमित्त भी नहीं है, ऐसा कहना है। पेज नंबर 20, हाँ पहली लाइन से पढ़ेंगे हम। सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत, सांसारिक ज्ञान यानी एक सूक्ष्म ज्ञान की बात है, इंद्रिय ज्ञान की बात है, यानी उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न करने का कार्य तो जीव का अपना है, उसमें हेतुभूत यानी निमित्त इंद्रिया है ना, पहले आ गया है इंद्रिया निमित्त है। ज्ञान होता है अपने से, यह ज्ञान है, सॉरी कान है, यह कान है, यह तो मिट्टी धूल है, यह आंख तो जड़ मिट्टी धूल है, क्योंकि वो शरीर की रचना है और वो पुद्गल से बनी हुई है, उससे कोई ज्ञान नहीं होता। यह तो मिट्टी है, धूल अजीव तत्व है, अंदर ज्ञान जो जानने का कार्य करने वाला तत्व है वह अपने से जानता है, उसमें ये इंद्रिया निमित्तक कहने में आती है। ऐसी बातें, बहुत सूक्ष्म बातें भाई। कुंदकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुए, अमृत चंद्राचार्य की यह टीका है, वे हजार वर्ष पहले हुए। दिगंबर संत वनवासी थे, जंगल में रहते थे, आत्मध्यानी, आनंद में मस्त, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त थे, उसकी यह वाणी है। आहा, श्रोता कहते हैं, मुनियों को गांव में रहने की इजाजत किसने दी? अरे, किसी ने नहीं दी। वह दृष्टांत नहीं आता है शास्त्र में? हिरण है, वह तो गांव के बाहर रहते हैं, शास्त्र में दृष्टांत दिया है। मुनि अंदर में गांव में कोई दफे आते हैं, लेकिन वे रहते हैं गांव के बाहर। जंगल में रहने वाले संतो दिगंबर मुनि यानी क्या? श्वेतांबर में जो वस्त्र सहित मुनि कहा है वह सब झूठ है। समझ में आया? श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी वस्त्र। यह मार्ग तो महावीर भगवान के निर्वाण के बाद निकला है, 2000 वर्ष पहले निकला है, यानी करीबन 500 वर्ष के बाद निकला, महावीर भगवान के 500 साल के बाद। मुनि जो सच्चे है, अपने में आनंद का अनुभव हुआ हो, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि हुआ हो, उसको तो वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं होता, यानी मुनि की बात है। अकेले वस्त्र बिना का नग्नपना तो अनंत मार लिया, यानी बिना आत्मानुभव का। पंच महाव्रत भी अनंत मार लिया, उसमें कुछ धर्म नहीं है, परंतु अंतर में आत्मा का सम्यक अनुभव दृष्टि हुई, आनंद कंद प्रभु ऐसा मैं रचकण का भी करता नहीं, बोलने की भाषा का भी करता नहीं, यह पलके फिरती है उसका भी मैं करता नहीं, और इच्छा होती उसका भी मैं करता नहीं, मैं सोच समझ कर ये व्रत परिणाम करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, ऐसी तो बात नहीं है। क्योंकि राग के कर्ता जो मानते अपने आप को, वो तो मिथ्या दृष्टि है। देखो, मुनियों को कहो या समय दृष्टि को कहो, राग आता है, पर राग आता है उसको वो भिन्न जानते हैं, और वो अपने को तो ज्ञान रूप ही अनुभव करते हैं। ऐसा समय दर्शन ज्ञान होता है, बाद में जब स्वरूप में लीनता होती है तब मुनिपना आता है। ये मुनिपना बाहर से नहीं आता है, अंदर से स्वरूप में लीनता होकर वो आता है, और ऐसे जीव को सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक समझे, बाहर में उनके नग्न दशा होगी तभी अंतरंग में इतनी वितरागता हो जाएगी, इतनी स्थिरता हो जाएगी। इस मुनिपना में तो अंतर में छठा गुणस्थान हो तो पंच महाव्रत का विकल्प आता है, लेकिन वह बंध का कारण है। क्योंकि मुनि योग्य जो छठे सातवें में जितना बंद हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो वो तो वहां पर जो संज्वलन बाकी है उसके कारण हो रहा है। तो उस संज्वलन का कार्य क्या हो रहा है? वो 28 मूल गुण पालन करने के जो परिणाम है, जिसको राग भाव कहते हैं, परंतु राग होने से है तो बंध का कारण आता है उस भूमिका में, क्योंकि अभी पूर्ण वितरागता नहीं हुई है। जितनी आत्मस्थिरता बढ़ेगी, वो संज्वलन भी मंद होते होते श्रेणी चढ़कर पूर्ण वितराग हो जाएगा। मुनि को वस्त्र रहित नग्न दिगंबर दशा होती है, तीन काल में इसके सिवा दूसरी दशा नहीं होती, दूसरे ने वस्त्र सहित वाले। वो ईर सर्व जगह रस्व चाहिए, इसको इसके लिखा ना, ई रस्व इसके सिवा। समझ में आया? नग्गे मोखो भणियो, भगवान कुनकुंदाचार्य का वचन है, बाह्य और अभ्यंतर नग्नपना है, यानी अंतरंग में भी नग्नपना होता है कि अंतरंग में तो कषाय से नग्न होते हैं, अकेला ये आता है ना, दोनों प्रकार का परिग्रह से रहित। दोनों कौन से? अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग तो समझ में आते हैं, वास वस्त्र है, पात्र है, अन्य जी बातें है, वो सब बहिरंग है। अंतरंग किसको कहेंगे? मिथ्या तो सबसे पहला, क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय, यानी सब ये कषाय नौ कषाय और मिथ्या तो सब मिलकर अंतरंग परिग्रह। तो अंतरंग में भी नग्न है, अकेला बाह्य नग्नपना तो अनंत मार लिया, पंच महाव्रत भी लिया, वह नग्नपना नहीं, अंदर में नग्नपना अर्थात विकल्प से रहित, विकल्प ने राग से रहित निर्विकल्प आनंद कंद प्रभु उसका अनुभव जिसको हम स्वभाव भाव कहते हैं, आनंद की वितरागी दशा में होना वह भाव नग्नपना है और बाहर में वस्त्र रहित पना वह बाह्य नग्नपना है। नग्गे मुखो बनियो से सा उमग्गा, यानी कि इसके सिवाय सब उन्न मार्ग हैं। सूक्ष्म बात है भाई, संप्रदाय को कठिन लगे लगे, लेकिन क्या हो सकता है भाई, मार्ग तो यह है। संप्रदायकों ने भी स्थानिक वासी में उनके सामने तो बहुतांश तो वहां से आए हुए श्रोता थे, तो कहते कि उनको कठिन लगे कहो या दुख लगे, परंतु मार्ग जो है वो है। 21 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। यहां कहते हैं, पांच इंद्रियों के विषय जहां छूट गए वहां तो उसे वस्त्र छूट जाता है, क्योंकि हमने देखा ना इंद्रिय विजय है, इंद्रिय में लोलुपता नहीं रही तो वस्त्र लेने का भाव भी नहीं रहा। नौ नौ कोटि से परिग्रह का त्याग है, ये नौ कोटि समझते हैं दक्षाबेन? जय बेन आप बताएंगे। हाँ, मन वचन काय और कृत कारिता अनुमोदन, 3x3, मन से वचन से और काय से, और हरेक में कृत यानी करना, मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदन करना, वचन से करना, वचन से कराना, वचन से अनुमोदना करना, काय से यानी स्वयं वो करना कराना अनुमोदना, ये सभी का पाप तो होता है। तो वो नौ नौ कोटि से परिग्रह का त्याग है, यानी बाहर दिखाने के लिए त्याग किया, अंतरंग में तो उसकी इच्छा ऐसा भी नहीं है। और वस्त्र है यह परिग्रह है, मन वचन काया से करना करवाना अनुमोदन करना, इस प्रकार नौ नौ कोटि से पर परिग्रह का त्याग है। भगवान ने यह कहा है, भगवान ने यह कहा है और यह कहा है। भगवान स्वयं तीर्थंकर थे, वे भी जब वस्त्र रहित हुए और अंदर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ तब मुनिपना आया। ऐसा नियम है, पहले बाहर से नग्नपना लिया जाता है और अंतरंग में स्थिर होकर तब वहां सातवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, फिर सातवां छठवां चलता रहता है। यहाँ क्या कहा, जो तीर्थंकर होने वाली उस जीव की बात है, वो भी जब वस्त्र रहित हुए, उनको जब मुनिपना कब आए, जब दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार की, भले वो दूसरे के साथ जाकर मांगते नहीं है, स्वयं दीक्षित हो जाते हैं, परंतु वस्त्र रहित हुए, यानी अकेले वस्त्र रहित नहीं, वस्त्र अलंकार सब कुछ त्याग देते हैं और हाथ से लोच केश लोच कर देते हैं आदि, वो सभी बातें होती है। तो कहते कि तब जाके ध्यान अवस्था में अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर अनुभव हो जाता है, मुनिपन आता है। पहले तो सम्यक दृष्टि तो थे ही थे, अब मुनिपना की बात करें, ऐसा किया था और ऐसा कहा, ऐसा किया था ऐसा कहा, किया कुछ और बताया कुछ, ऐसा नहीं है। श्रोता कहते काल हल्का है, यानी पंचम काल है, उतना तो थोड़ी छूट चाहिए। पूज्य गुरुदेशी, काल कोई लागू पड़ता नहीं, काल बाल कुछ आत्मा में है ही नहीं। अभी बाकी स्वभाव के लिए काल लागू होता है, अग्नि चौथे काल का गर्म था और पंचम काल में थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ तो गर्म है और वो नॉर्थ पोल पर क्या कहते, अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है। तो मुनिपना जो चौथे काल के मुनि है और पंचम काल के मुनि है, तो थोड़ा सा चलेगा कि नहीं शिथिलाचार, क्यों यही कह रहे हैं यहाँ पर। और ये जानबूझकर प्रश्न पूछते हैं, काल हल्का है तो थोड़ा तो शिथिलाचार चल जाएगा, और फिर नाम भी देंगे द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के अनुसार, कहीं पर भी लगा लो उसको। ऐसा नहीं होता, काल बदल गया तो भगवान का स्वरूप नहीं बदलेगा, मुनि का स्वरूप नहीं बदलेगा। मुनि तो वही है जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। लिखा ना, काल कोई लागू पड़ता नहीं, काल बाल कुछ आत्मा में है ही नहीं, एक हो या तीन काल में परमार्थ का पंथ, तीन काल तीन लोक में परमार्थ का मार्ग एक यह ही है कि राग रहित और वस्त्र रहित मुनिपना है। बाहर में कुछ भी हो, अंतरंग में तो मुनि दशा ऐसा कभी नहीं होता। निमित्त से कुछ नहीं होता, फिर भी ऐसा ही सहचर होता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यहां यह कहते हैं कि पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान, अर्थात एक एक इंद्रिय का एक एक विषय का ज्ञान होता था, अब भगवान को समरस रूप से एक पर्याय में सब इंद्रिय का ज्ञान एक साथ एक समय में होता है। हमने तो देखा ना, खाली इंद्रिय की बात क्या है, अनंत गुणों का जो पर्याय है वो सबका, और सभी द्रव्यों के, सभी गुणों के, सभी पर्यायों का ज्ञान एक समय में युगपत होता है। बहु सूक्ष्म भाई, अनंत काल हुआ रखड़ते, फिर भी उसने समय दर्शन प्राप्त नहीं किया। बाकी तो मुनिपना पाला, दिगंबर हुआ। देखो, पाला कहा, मुनि हुआ ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसने मुनिपना किसमें माना, बाह्य कुछ, हाँ बाह्य को, बिल्कुल जैसे दिगंबर मुनि होते वैसे बाहर से वस्त्र का त्याग किया, अलंकार का त्याग किया, केश लोच किया, जैसे उनकी जो निरतिचार चर्या पालन की, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे नमस्कार करना, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, कैसे आहार लेना, कैसे दोष टालना, वो सब किया, परंतु वो करने के जो विकल्प है उसमें अभी आत्मबुद्धि मेरापन छूटा नहीं है, जिसको कहेंगे राग का कर्तापना छूटा नहीं है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, तो कहते वो मुनिपना हुआ, वो क्या है, एकाद भव देव का मिल जाएगा और क्या होगा। तो कहते कि फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है ना। बाकी तो मुनिपना पाला, दिगंबर हुआ, उसके लिए चौका बनाकर आहार बनाया हो तो प्राण जाए तो भी नहीं ले, क्योंकि वो उद्दिष्ट त्याग है ना उनके, उनके लिए किसी ने बनाया हो तो नहीं लेते, क्योंकि बनाने के जो जो आरंभ आदि है, उसकी जो हिंसा है, उसके अनुमोदना का पाप लगता है उनको। तो कहते ऐसा, जिसको कहते चोखा एकदम, ऐसा अनंत बार हुआ है, लेकिन वह तो बाह्य क्रिया है। देखो, जो भावलिंगी संत है उनकी भी बाह्य क्रिया होगी ऐसी, परंतु डिफरेंस क्या उसमें, वो तो उसका कर्ता बना लेके बैठे है, जिसने बाह्य केवल त्याग किया है वो, और इनके तो अंतरंग में तो आत्मा का अनुभव है ही है, क्रियाएं हो रही है, पर उसको अपने को कर्ता नहीं मान रहे, ना राग का और ना शरीर की क्रिया का। यह तो बाह्य क्रिया है, वह कोई धर्म नहीं, प्रभु क्या करे, यहाँ तो चौका बनाते हैं, वह तो महापाप है। साधु के लिए चौका बनाकर आहार देना वह तो महापाप है, लेने वाले को भी महापाप है। सूक्ष्म बात है प्रभु, क्या हो, यह तो सत्य की बात आए तब जाहिर करना पड़ता है, कोई व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, यानी किसी का नाम लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को देखकर बात नहीं हो रही है, परंतु जो सत्य है तो उसको तो कहना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं। यहाँ तो पांचों इंद्रियों का विषय छूट गया, जहाँ मुनिपना में नग्न था तो केवली भी नग्न है, यानी मुनि जहाँ वस्त्र नहीं धारण करते तो केवली को वस्त्र कहाँ से हो जाएंगे, केवली को कोई वस्त्र आदि नहीं होते, तो वस्त्र नहीं होते तो मुकुट अलंकार तो हो गए कि नहीं हो गए। ये तो रागी जीवों ने उन पर ये ठोक ठोक दिया, अलंकार यानी गले के जो आभूषण, कान में कुछ डालते हैं, गले में और क्या क्या, हाँ वो सब आ गए ना, आगे भी चढ़ाते, उसके ऊपर रत्न जड़ते हैं और क्या क्या करते, वो सब, हाँ सब क्या, सच्चे हीरा, हाँ तो उसकी महिमा भी आती फिर। सच्चे हीरे से किया हमने, भगवान के लिए इतना किया है ना। पहले देखो, श्रोता पूछते हैं वस्त्र में मूर्छा हो तो परिग्रह कहा जाए, यानी वस्त्र है पर उसमें कोई उनको अपमत्व भाव नहीं है, ऐसे ही रखा है, तो कहते वस्त्र रखना यही मूर्छा है। क्या कहा, वस्त्र रखना यह राग है, मूर्छा है, मुनिपना नहीं। क्योंकि वस्त्र क्यों रखेंगे? लोकलाज के लिए, या हमारे लिए नहीं, हम दुनिया का कल्याण, दुनिया को तकलीफ नहीं हो गई इसलिए पहनते, ऐसा भी कहने वाले हैं। संसार में गृहस्थ आश्रम में सम्यक दृष्टि होता है, ऐसी बात है। एक भाई हमारे पास आया था, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं ना, यहाँ जंगल में 44 वर्ष हुए, प्रतापगढ़ का आदमी आया था, उसने कहा मैं तीर्थंकर हूँ। व्याख्यान सुना और बाद में कहा कि मैं केवली हूँ, चार घाती कर्म नाश हुए, चार बाकी है। भगवान को चार कर्म बाकी थे, उनके पास पैसे नहीं थे, मुझे चार कर्म बाकी और मेरे पास भी पैसे नहीं है। हमने कह रहे, अरे क्या कहते हो तुम, अरे मूढ़ थे, वस्त्र पहनकर व्याख्यान में बैठा था, खुद पहले पालीताना में था, तब पत्र आया था कि मुझे वहाँ आना है तो मेरे लिए व्यवस्था कर देना, हम तो यहाँ किसी को बुलाते नहीं और किसी को लिखते भी नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे लोग हमको पूछते हैं, हम आपके घर में आके रह गए क्या? हमने दोनों का करते करते हम और टिफिन लेके आओ।
देखो अगर आपको पता हो तो हम तो आना आना ऐसा आज तक किसी को नहीं मिला। 1979 में गुरु सुनकर ऐसा वहाँ मन कर रहा था।
देखो बुलाते भी नहीं, लिखते भी नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 22 पेज पर आए हम। एक दिगंबर मुनि थे, उनको बहुत वर्ष से यहाँ आने की इच्छा थी, वे कहते थे हमको थोड़ा लिखिए तो हम वहाँ आएंगे, हम तो किसी को लिखते नहीं। आपको बोलना है, मैं करूंगी, फिर ऑन करूंगी। यहाँ कहते हैं पांचों इंद्रियों के विषय छूट गए, उसे अंतर्बाह्य परिग्रह कुछ नहीं होता, ऐसी अंतर में शुद्ध उपयोग की रमणता होती है, अकेली नग्न दशा नहीं, उससे शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान होने पर, पहले आई थी ना, शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान होता है। सर्व इंद्रियों के विषय एक समय में जानने में आते हैं, पहले जो एक एक इंद्रिय का ज्ञान होता था वह भगवान केवली परमात्मा को एक समय में समरस रूप से सर्व का ज्ञान होता है, है? सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूप से जानते हैं, और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में, प्रकाशन करना समझते, जानना, स्वयमेव यानी भगवान आत्मा केवल ज्ञान के पर्याय से स्वयं जानते हैं, कहते समस्त रूप से यानी संपूर्ण रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में, अर्थात स्वर पर दोनों को प्रकाशित करता है, यानी स्व पर प्रकाशक ज्ञान, यानी अपना स्व का तीन काल का ज्ञान, अपना भी तीन काल का ज्ञान का अर्थ क्या है, अनादि अनंत अपनी भी पर्याय सारी एक समय में जान लेते हैं, और पर का भी तीन काल का ज्ञान, अपने में तो मैं एक हूँ और मेरे अनादि अनंत पर्याय, पर में तो अनंत अन्य अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है, एक एक परमाणु की कौन कौन सी अवस्था होगी, कैसे कैसे स्कंद रूप से हुए होंगे, कब पर सिंगल परमाणु रहे थे, उनकी कौन कौन सी पर्याय हुई थी, तीन काल की ख्याल में नहीं, कितनी अनंतता होगी उस ज्ञान में, एक समय में सब कुछ जान लेते हैं। स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते भेद भ्रम भारी, गेय शक्ति दुविधा प्रकाशी, स्वरूपा निज रूपा, स्वरूपा पर रूपा भासी चाहिए, ये स्वरूप और निज रूपा एक ही शब्द होता है, इन्हें दोनों में से कुछ एक ही रखना है, निज रूपा पर रूपा भासी, निज रूप और पर का ज्ञान भगवान को एक समय में त्रिकाल होता है। वह तो यहाँ अपने पहले आ गया था, भगवान को कवलाहार नहीं होता, श्वेतांबर मानते हैं ना कि भगवान को रोग था, बाद में दवाई ली और रोग मिट गया, सब बात विपरीत है भाई, यह पहले 20वीं गाथा में आ गया। भगवान को शरीरगत क्षुधा भी नहीं है और उसका दुख भी नहीं है। और आहार ले तो सुख है और आहार न ले तो दुख है, ऐसी चीज है नहीं। उनके तो आहार ही नहीं होता। भगवान तो अनाहारी है, कवलाहार बिना अंतर के अमृत का अनुभव करते हैं। अमृत यानी आत्मिक सुख। नहीं तो आप कहेंगे देव भी कवलाहार नहीं करते और अमृत का सेवन करते, वैसी बात नहीं है। यहाँ पर देवों में कंठ से अमृत झरता है, उनके कवलाहार यानी मुंह से ऐसे कवल लेके भोजन नहीं करते, आहार नहीं करते देव। अभी यहाँ कहते अमृत का अनुभव करते, अमृत का अनुभव यानी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे। उसको आहार क्या, पानी क्या, दवाई क्या, रोग क्या, प्रभु यहाँ कहते हैं सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूप से जानते हैं। और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं। ये केवल ज्ञान का वर्णन है। जो ज्ञान पर्याय प्रकट हुई है वह नाश नहीं होती, उसको अविनाशी कहा। नाश नहीं होती, हमने तो सुना है प्रत्येक समय में नाश होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों कहा? नहीं नहीं, देखो केवल ज्ञान हुआ दूसरे समय में, दूसरा समय का केवल ज्ञान हुआ, तीसरे समय में केवल ज्ञान हुआ, चौथे समय में केवल ज्ञान हुआ, पर वही का वही नहीं है, नया नया हर समय का नया, इसलिए कहते हैं अविनाशी। यानी अभी केवल ज्ञान मिटकर कभी मतिशुद्ध ज्ञान नहीं होने वाला है, अनंत काल तक केवल ज्ञान रहेगा, इसीलिए अविनाशी का। परंतु हर एक समय का नया नया, एक बार जान लिया और वही जानते रहे हम, एक बार जान लिया अभी क्या जानना, ऐसा नहीं है। हर समय की ज्ञान, क्योंकि पर्याय है ना, हमने देखा था ना द्रव्यत्व गुण में निरंतर परिणमन होता है, तो क्या परिणमन रुक जाएगा? उत्पाद व्यय ध्रुवता ये जो द्रव्य का स्वभाव बताया है वो क्या मिट जाएगा? वहां पर भी उत्पाद और व्यय चल रहा है। किसका उत्पाद और किसका व्यय? नए केवल ज्ञान का उत्पाद और पूर्व समय के केवल ज्ञान का व्यय, फिर नए का उत्पाद, फिर पूर्व का व्यय, इस तरह से चलेगी गाड़ी। कब तक? अभी कायम के लिए, अनंत काल तक। बापू केवल ज्ञान को समझना यह कोई साधारण बात नहीं है। जिस समय समझ जाओ केवल ज्ञान का स्वरूप, उसी समय आत्मा का अनुभव हो जाएगा। भगवान ऐसे थे और अरिहंत केवल ऐसे है, ऐसे जान लिया, उसमें क्या? केवल ज्ञान क्या दशा है और कैसे उत्पन्न होती है यह यथार्थ रूप से जानना चाहिए। यह दशा है ना, यानी अवस्था है, पर्याय है। उत्पन्न हुई तो कायम रहती है, केवल ज्ञान का नाश नहीं होता। पर्याय पलटती है, यानी एक समय में जो ज्ञान केवल ज्ञान है वह दूसरे समय में नहीं रहता, दूसरे समय में दूसरी पर्याय होती है। पर्याय ना, केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान गुण है, वह त्रिकाल है और यह केवल ज्ञान उसकी पर्याय है, यानी अवस्था है। एक समय में एक पर्याय उत्पन्न हुई, दूसरे समय में दूसरी हुई, तीसरे समय में तीसरी हुई, ऐसे सादी अनंत काल रहेगी। सादी क्यों कहा? हाँ दक्षा बहन, हाँ शुरू हुई, उसको बिगिनिंग था, अनादि से तो नहीं। अभी हम जो मतिशुद्ध ज्ञानी है और हम भविष्य में जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसके आदि हो जाएंगे, है ना? या जो जिन्होंने प्राप्त किया उनकी बात करते, पहले महावीर भगवान भी हमारे जैसे अल्प ज्ञानी थे, क्षोभम ज्ञानी थे, मुनि हुए, फिर केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान हुआ तो उसके आदि हुई, यानी स्टार्टिंग हुई, पहले से तो था नहीं। अब वो कब तक चलेगा? तो अनंत, इसको कहते हैं सादी अनंत। लेकिन इस पर्याय का नाश होकर अल्प ज्ञानी हो जाए ऐसा नहीं, इसलिए उसको अविनाशी कहा। यानी केवल ज्ञान मिटकर फिर क्षोभम ज्ञान हो जावे, ऐसा कभी नहीं होता। अब आना 23 नंबर के पृष्ठ पर। कुछ लोग कहते हैं ना कि आत्मा मोक्ष में जाए, लेकिन यहाँ राक्षसों का जोर बढ़ जाए, भक्तों को भीड़ पड़ जाए, भीड़ यानी संकट पड़ जाए, तो भगवान अवतार ले, ऐसा गीता में कहते हैं। लेकिन वह सब झूठी बातें हैं। भगवान मार्ग तो ऐसा है भाई, उनके मान्यता है। यहाँ जब जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार ले लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि यह केवल ज्ञान अविनाशी है। केवल ज्ञान जिसे हुआ वह फिर से भव में संसार में अवतार ले, उसे ऐसा होता नहीं। अरे रे, कहते अविनाशी और लोकोत्तर, लोक से उत्तर, यानी उनकी दशा भिन्न है। एक होता है लौकिक और एक है लोकोत्तर। लौकिक से दशा ही भिन्न जाति की होती है, ऐसे लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं, यानी केवल ज्ञानी हुए हैं। ऐसे लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए ऐसा कहा, समझ में आया? समझ में आए उतना समझना बापू, क्या कहते हैं? समझना, थोड़ा भी समझ जावे तो कल्याण हो जाए कहते हैं। इतना तो रुचि तो हो जाएगी, जिज्ञासा हो जाएगी पूरे समझने की, और पूरा समझ जाओ तो निहाल हो जाओगे। यह वीतराग का मार्ग तो बहुत गंभीर है, अभी तो गड़बड़ बहुत चली है। अभी तो व्रत करो, तपस्या करो, उपवास करो, यात्रा करो, उसमें तुमको धर्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो ये सही उपदेश है ना कि नहीं है? इसे ये धर्म नहीं है, वह सब मिथ्यात्व की गड़बड़ है, ऐसा है। यह तो कहा ना, ऐसा तो अनंत बार किया है, नवी ग्रेवेक तक गया, लेकिन आत्मा राग से भिन्न है, विकल्प से भिन्न है, उसका अंतर अनुभव किया नहीं, यानी तब तक तो कुछ हाथ में नहीं लगेगा। सवेरे आया था ना भूतार्थ परिग्रहण, समय सार में 55 नंबर के श्लोक में आया था भूतार्थ परिग्रहण, अर्थात एक समय में त्रिकाली भगवान नित्यानंद प्रभु अंदर विराजमान है। विराजमान है क्योंकि वो तो स्वभाव तो अनादि का है, इसे विराजमान है, पर यह हर समय पलट रही है, और स्वभाव तो अनादि अनंत जैसा का वैसा है, यानी हर पर्य के पीछे मौजूद है कि नहीं है? जिसे पर्याय होती है तो हाँ, उसकी तो हाँ आती है, स्वभाव क्या पता भी, अरे पर उसके बिना आई कहाँ से पर्याय? अधर से तो नहीं आती कहीं से। तो कहते भूतार्थ नाम क्षति चीज पदार्थ है, क्षति यानी मौजूदगी रखने वाली चीज है, उसका अनुभव करना, उसका ज्ञान करना, उसको ग्रहण करना का ही अर्थ तो जानना, यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। बाकी शास्त्र का ज्ञान है वह ज्ञान नहीं। क्या कहा? शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, आत्मज्ञान को ज्ञान कहा। वो आता है ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान ही हम इसलिए लेते हैं कि आगम से जानकर वहां तो हमें सूचना दी जाती है, जिसको इशारा किया जाता है, दिशा दिखाई जाती है, मार्ग तो हमें आगे बढ़ाना है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो यहाँ बोर्ड आते हैं ना रास्ते में, इस दिशा में ये गांव है, उस दिशा में वो गांव है, तो बोर्ड क्या आपको ले जाता है कि हाथ को पकड़कर? वो तो दिखाता है, दिशा दिखाता है। वैसे ही आगम से हमें मार्ग का पता चलता है, परंतु मार्ग तो हमें, और वो मार्ग के बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, बस अंतरंग में ही है सब कुछ। के लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए है ऐसे इन केवली भगवान को ईरस्व समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समस्त, यानी पूरा सब द्रव्य, पूरा सब क्षेत्र, समस्त काल, समस्त भाव, एक आत्मा में अनंत गुण हो आकाश के अनंत अनंत प्रदेश है, कहीं अंत नहीं, अंत नहीं है, कहीं अंत है क्या? अगर है तो पीछे क्या है? इतना 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 आकाश 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 आकाश, उसमें एक परमाणु जितनी जगह रोके उसको प्रदेश कहते हैं, इतने अनंत प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश जिसका अंत नहीं, इतने प्रदेश है, उससे भी अनंत गुण एक आत्मा में गुण है। गुरुदेव ने बहुत बार कहा है, वो हम आते हैं ना अनंत की लिस्ट हमेशा गिनाते हैं ना सिद्धांत प्रवेशिका में, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत, उससे अनंत गुण क्या है? तीन काल के समय, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, उससे अनंत गुणे प्रत्येक द्रव्य में गुणों की संख्या, इतने अनंत। उसे खबर कहाँ है? उसकी खबर नहीं, इसलिए वो अनंत गुण मिट नहीं जाते, वो तो है अनादि से जैसे के वैसे है। इस भगवान आत्मा में अनंत गुण है, आकाश के प्रदेश की संख्या का अंत नहीं, अनंत 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 कहीं अंत नहीं। उसके जो प्रदेश की संख्या है उससे एक आत्मा में अनंत गुणा गुण है। इस अनंत गुणा गुण का अंत कहाँ भाई? प्रभु इन सब भाव को केवली भगवान जानते हैं, अनंत द्रव्य को जानते हैं, क्योंकि द्रव्यों की संख्या अनंत हुई, अनंत क्षेत्र को जानते हैं कि आकाश ही अनंत प्रदेश ही है, अनंत आदि अंत बिना के काल को जानते हैं और अनंत भाव को जानते हैं। क्या कहा? अनंत द्रव्यों को जानते हैं, अनंत क्षेत्र को जानते हैं, अनंत काल यानी वो अनादि अनंत प्रवाह पूरा उसको जानते हैं और अनंत भाव को जानते हैं। एक एक आत्मा में ऐसा अनंत गुणा गुण है, ऐसे ऐसे तो अनंत आत्मा और अनंत गुणा परमाणु है। देखो यहाँ केवल अनंत गुणा परमाणु कहा, वो कितने अनंत है मालूम है? कैसे काउंट किया है आपको पहले बताया था आपको ये। देखो जैसे दो संख्या है, आपको वर्ग 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 करते जाना है, स्क्वेयर, दो का वर्ग चार का वर्ग 16, उसका वर्ग 256, उसका वर्ग 65 जिसको कहेंगे 65536, उसका वर्ग अभी वो 10 डिजिट प्रमाण हो जाता है जिसको कहते हैं बादल, उसका वर्ग 31 20 डिजिट प्रमाण हो जाता है। अभी 6 बार किया वर्ग तो आगे के बोलने की कुछ धारस नहीं होता। दो संख्या को स्टार्टिंग में रखकर अब क्या करना है, जीवों की संख्या कितनी अनंत, वो अनंत को पहले पोजिशन पर रखो, वो जीव राशि वाला अनंत है उसका वर्ग करो यानी अनंत का स्क्वायर हुआ, वो वर्ग का वर्ग, फिर वर्ग का वर्ग, फिर वर्ग का वर्ग, कितने बार? अनंतानंत बार। तो कितना बड़ा अनंत होगा? तो उतने तो पुद्गल द्रव्य, फिर पुद्गल को स्टार्टिंग में रखो, फिर उसका वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग अनंत बार करो, तब जाके 3 काल के समय होगी। फिर वैसे ही काल को रखो और उसको अनंत अनंत वर्ग करो तो आकाश के प्रदेश हो जाएंगे। अब उसको रखकर जीव के गुण, यानी जीव के नहीं प्रत्येक द्रव्य के गुण निकालना है, भले एक प्रदेशी परमाणु हो कि अनंत प्रदेशी आकाश हो, प्रत्येक द्रव्य में इतने गुण है, यही यहां कह रहे। इसको खबर कहां है कहते ना। देखो इन सब भाव को, ये बात आई ना, अनंत द्रव्य को, अनंत क्षेत्र को, अनंत काल को, अनंत भाव को जानते हैं, और ऐसे आत्मा अनंत और अनंत गुणा परमाणु इन सबको जानते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ा, नीचे से दूसरी लाइन अभी पढ़ने जा रहे हैं। यहां तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की थोड़ी व्याख्या कही कि द्रव्य कितने हैं कि अनंत है, आत्मा अनंत है। एक लसन की कणी या प्याज की एक राय जितनी कणी में असंख्य तो औदारिक शरीर है और एक शरीर में अनंत गुणा जीव है, यानी अनंत जीव है। अभी अनंत गुणा किससे कहना है? तो सिद्ध राशि से अनंत गुणा कहना था, ये बताएंगे अभी। 6 मास और 8 समय में 608 चाहिए, 108 नहीं। देखो 6 मास और 8 समय में 608 सिद्ध होते हैं, तो अभी तक सिद्ध की संख्या अनंत हुई, क्योंकि अनादि से जितना काल बीत गया ऐसे 6 महीने अनंत बार गए, तो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष गए, तो अभी तक कितने हुए? तो अनंत गए। उससे भी एक शरीर में, कौन सा शरीर है? निगोद का एक शरीर अनंत गुणा जीव है। पहले ऊपर आया था ना, एक शरीर में अनंत गुणा जीव, तो किससे अनंत गुणा? तो कहते सिद्ध राशि से अनंत गुणा। वो सिद्ध राशि क्या है उसको लिए उन्होंने हर 6 महीने 8 समय की बात की थी। और एक एक द्रव्य में अनंत गुणा गुण है, यानी वो एक शरीर में अनंत इतने जीव निगोद के, और प्रत्येक आत्मा है उसमें अनंत अनंत गुण। सूक्ष्म बात है बापू, वितराग मार्ग अलौकिक छे। अभी आते हैं 25 पेज पर। यहाँ कुछ लिखा है प्रवचन अपूर्ण है, कुछ छोड़ दिया उन्होंने। अभी हम गाथा का हेडिंग पढ़ते हैं। अथ आत्मन ज्ञान प्रमाणत्वम ज्ञानस्य सर्वगतत्वम च उद्योतयति। यानी अभी आत्मा का ज्ञान प्रमाणपना, यानी आत्मा कितना है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, ज्ञान प्रमाणपना और ज्ञान का सर्वगतपना उद्योत करते, उद्योत करते उजागर करते उसको बताते। देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे। आदानानपमानम नानम नेयप्पमानमुद्दिष्टम नेयम लोयालोयम तम्मानानम तु सौवगयम आत्मा ज्ञान प्रमाणम ज्ञानम गेय प्रमाणमुद्दिष्टम गेयम लोकालोकम तस्माज्ञानम तु सर्वगतम जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण भाक्यु ज्ञान गेय प्रमाण छे ने गेय लोकालोकते थी सर्वगत ज्ञान छे। देखो इसी पेज पर अन्वयार्थ लिखा है ना, उसको पढ़ते 26 पेज पर। आत्मा यानी आत्मा ज्ञान प्रमाणम ज्ञान प्रमाण छे, यानी जितना ज्ञान उतना ही आत्मा है। ज्ञान कितना है तो ज्ञानम ज्ञान गेय प्रमाणम गेय प्रमाण छे उद्दिष्ट मैंने कहूं छे। अतः गेय कितना है तो गेयम लोकालोकम गेय लोकालोक छे तेथी तस्मात एटले तेथी ज्ञानम तु ज्ञान सर्वगतम सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक छे। देखो अन्य मति क्या कहते हैं सर्वव्यापक ईश्वर है। अब यहाँ कहा सर्वव्यापक ज्ञान है तो केवल ज्ञान पूरे लोकालोक में व्याप्ता है कि नहीं व्याप्ता है, आप क्या कहते हैं? यहाँ लिखा है ना सर्वव्यापक का ना सर्वगत कहा सर्वव्यापक का किस अपेक्षा से जानने की अपेक्षा भाव की अपेक्षा से कहा। पर उसका क्षेत्र कहाँ है? जितना बड़ा जीव उतना ही उसका साइज है, केवल ज्ञान का भी साइज उतना ही है। नहीं समझे? आदिनाथ भगवान 500 धनुष हाइट होती उनकी थी और महावीर भगवान 7 हाथ के थे, तो किसका केवल ज्ञान बड़ा? हाँ दोनों की क्वालिटी सेम है पर वो कितने क्षेत्र में वो रहता है, वो जितना बड़ा जीव उतना ही बड़ा उसका ज्ञान गुण, एक एक गुण उतना बड़ा है और उतनी उसकी पर्याय होगी। पर्याय भी वो जीव के बाहर नहीं कहीं जाएगी, पर्याय उतने ही क्षेत्र में। जीव अपने में रहकर पूरे लोकालोक को जान लेता है तो इसलिए ज्ञान की अपेक्षा कहाँ तक है उसका ज्ञान, कहाँ तक होंगे? यहाँ तक उसने जान लिया तो यदि उसको लोकालोक कहा, ये अपेक्षा समझना। नहीं तो ऐसा नहीं समझना मति ज्ञान तो यहीं तक लिमिटेड है और केवल ज्ञान तो सब जगह फैल जाता है, कुछ बाहर बाहर कुछ नहीं फैलता वो।
यहाँ पर दो बातें, एक है भाव अपेक्षा और एक है क्षेत्र अपेक्षा। तो भाव अपेक्षा तो सर्वगत है और क्षेत्र अपेक्षा तो असंख्यात प्रदेश में है। तो क्षेत्र का कितना है तो लोकालोक प्रमाण,
क्योंकि क्षेत्र नहीं भाव।
हाँ जी
क्षेत्र नहीं भाव।
भाव सब मैंने क्या कहा?
क्षेत्र।
क्षेत्र नहीं भाव जो है, क्योंकि आकाश द्रव्य तो लोकाकाश में है अलोक आकाश में भी है, इस अपेक्षा से वह अनंत प्रदेश ही है। लेकिन कुछ भी हो वे क्षेत्र अपेक्षा से आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश ही हो, ये ध्यान में रखना।
हाँ अभी टीका जो अमृतचंद्राचार्य की उसको पढ़ते हैं। देखो समगुण पर्यायम द्रव्यम, गुण पर्याय अर्थात युगपत सर्व गुणों अने पर्यायो तेज द्रव्य छे। क्या कहते हैं? जिसो गुण पर्यायवत द्रव्यम है ना सूत्र, यानी द्रव्य क्या है तो हमने क्या सिखाया? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो खाली गुण है कि उसकी प्रकट अवस्था भी होती है उसके साथ साथ, तो हर एक गुण की प्रकट अवस्था भी है। तो गुण और पर्याय उसका समूह वो द्रव्य है। यहाँ क्या कहा, युगपत सर्व गुणों यानी सर्व पर्याय, सर्व गुणों यानी एट ए टाइम है, और सर्व पर्याय कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी, अनादि से अनंत तक की, उसको सर्व पर्याय कहेंगे। ते द्रव्य छे ए प्रमाण वचन प्रमाणे आत्मा ज्ञान थी हीनाधिकता रहितपणे परिणम तो हुआ थी, ज्ञान प्रमाण छे अने ज्ञान ज्ञेनिष्ठ हुआ थी, यानी जितने ज्ञेय उतने, यानी ज्ञान ज्ञेय उनको जानता है, ज्ञेनिष्ठ कहा, अभी उसको उपमा देके समझाते हैं। दाह्यनिष्ठ दहन्नी जेम, जो जालता जलाता है अग्नि उसको दहन कहा, और वो दाह्य पदार्थ यानी क्या है, जो जलने योग्य है वो दाह्य पदार्थ कहते हैं, जिसको हम ईंधन कहेंगे। जैसे लकड़ी जलती है, तो जलती हुई लकड़ी है, तो लकड़ी का जो शेप है वैसे अग्नि का भी दिखेगा ना वहां पर। हाँ, तो कहते दाह्यनिष्ठ दहन्नि जेम ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय तो लोक ने अलोकना विभाग थी विभक्त, अनंत पर्याय माला थी अलिंगित स्वरूपे सूचित एने प्रकट जना, तो नाशवंत देखा तो छता ध्रुव एवो षड्द्रव्य समूह छे, एटले के बधु छे। देखो क्या क्या बताए यहाँ पर, यहाँ ज्ञेय क्या क्या है, तो कहते लोक अलोक से विभक्त किया हुआ ऐसा है, यानी लोकालोक पूरा है, और क्या है अनंत पर्याय माला, यानी प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायों से युक्त है, यानी प्रकट जानने में आता है, और पर्याय रूप से नाशवंत देखा तो छता ध्रुव है वो षड द्रव्य समूह है। द्रव्य तो ध्रुव है और वो तो षड द्रव्य समूह वो लोक है, एटले के बधु छे। ज्ञेय तो छे द्रव्य नो समूह एटले के बधु छे, माटे निशेष आवरणना क्षयनी क्षणेज, निशेष यानी कुछ भी शेष रखे बिना, आवरण का क्षय, आवरण ने ज्ञानावरण दर्शनावरण पांचों ज्ञानावरण और सभी दर्शनावरण जो है उनके क्षय की ही समय में, क्षणेज लोक ने अलोकना विभागती विभक्त समस्त वस्तुओं ना आकारों ना पार ने पामीने, वस्तुओं के आकार के पार को पाना यानी वस्तुओं की विशेषताओं को जान लेना, वस्तुओं को सभी उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सभी चीजों को जान लेना, ये उसके आकारों के पार करना कहते हैं। ए रीतेज अच्युतपणे रहेतु हुआ थी ज्ञान सर्वगत छे, अच्युत यानी वहां से ढलता नहीं है, च्युत नहीं होता। इसी टीका का भावार्थ भी खाली नीचे बता है उन्होंने पांच लाइन में, गुण पर्यायो थी द्रव्य अनन्य छे यानी अन्य छे यानी उससे जुदा नहीं है, गुण और पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। गुण तो एट ए टाइम हर समय विद्यमान है, अनंत गुण एट ए टाइम सब है ही है, पर्याय एक के बाद एक होती है, पर वो निश्चित होने वाली होती है, इसलिए द्रव्य कहते ही अनादि से लेकर अनंत काल तक प्रति समय जो कुछ पर्याय हो चुकी और होने वाली है उस सबको मिलकर हम द्रव्य कहेंगे, तभी हमारी द्रव्य की परिभाषा पूरी हो गई, नहीं तो नहीं। यानी जब हम कहते हैं ना द्रव्य केवली के ज्ञान में प्रमेय होता है, झलकता है, किस रूप से, अनंत गुणों का समूह और अनादि अनंत पर्याय ये पूरा मिलकर द्रव्य होता है, नहीं तो वो द्रव्य अधूरा कहेंगे हम उसको, और इस रूप से ही केवल ज्ञानी उसको जानते हैं। यहां लिखा गुण पर्याय थी द्रव्य अन्य छे, माटे आत्मा ज्ञान थी हीन अधिक नहीं हुआ थी ज्ञान जेवड़ो छे, ज्ञान थी हीन अधिक नहीं, उसका अर्थ क्या है, जितना बड़ा ज्ञान है उतना ही आत्मा भी है ऐसा कहेंगे, समझे ना, यही कहना चाहते। अने जेम दाह्यने, दाह्यने बढ़वा योग्य पदार्थ ने अवलंबन नार दहन यानी अग्नि, दाह्यनी बराबर छे यानी जो पेपर जल रहा है तो अग्नि कितनी बड़ी हो, तो जो जलते हुए पेपर जो है उतनी अग्नि भी है। तेम गेयनी अवलंबनार ज्ञान, गेयनी बराबर अच्छे, गेय तो समस्त लोकालोक अर्थात बधुई छे, माटे सर्व आवरण नो क्षय थताज ज्ञान सर्वने जानतो हुआथी, अने पछी कदी सर्वने जानवामाथी च्युत नहीं थतो हुआथी। अच्युत कहा ना, यानी उसका सबको जान लेना ये तो कायम रहता है। ज्ञान सर्वव्यापक छे, किस अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा सर्वव्यापक, पर यहाँ उसके प्रदेश, आत्मा के प्रदेश पूरे लोक अलोक में व्याप्त होकर जानते, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अब आना लास्ट पेज पर, 25 नंबर का पेज, ये बीच में जो जयसेन आचार्य की टीका है वहां से पढ़ेंगे। एवं केवलीना समस्तम प्रत्यक्षम भवती इति कथन रूपेण प्रथम स्थले गाथा द्वयम गतम। हमने देखा था ना, उनको सब कुछ प्रत्यक्ष है, परोक्ष कुछ नहीं है, ये दो गाथाएं गई। अथ आत्मा ज्ञान प्रमाणो भवति इति ज्ञानम च व्यवहारेण सर्वगतम इति उपदिशति। क्या कहते हैं यहाँ भी, क्या बताएंगे, आत्मा ज्ञान प्रमाण बताया है और ज्ञान व्यवहार से सर्वगत है, ऐसा उपदेश देते हैं। आदा नान प्रमाणम, आदा यानी आत्मा, ज्ञानेन सह हीनाधिकत्व अभावात आत्मा ज्ञान प्रमाणो भवति, यानी जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, तथा ही वही इस प्रकार है। समगुण पर्यायम द्रव्यम भवति इति वचनात्, अभी हमने देखा ना द्रव्य गुण और पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहेंगे। इति वचनात् वर्तमान मनुष्य भवे, वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाणः तथैव। क्या कहते हैं, अभी वर्तमान मनुष्य भव में वो वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण है, आत्मा कितने प्रमाण है, मनुष्य पर्याय जितना है। तथैव उसी प्रकार मनुष्य पर्याय प्रदेशवर्ती ज्ञान गुण प्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथा अयम आत्मा, वैसे उसी प्रकार यह आत्मा मनुष्य पर्याय के प्रदेशवर्ती ज्ञान गुण प्रमाण प्रत्यक्ष देखने में आता है। तथा उसी प्रकार निश्चयता, निश्चय से सर्वदा एव अव्याबाध अक्षय सुखादि अनंत गुणाधार भूतो यो असौ केवल ज्ञान गुण तत्प्रमाणो अयम आत्मा, यानी वो सर्वदा निश्चय से, सर्वदा यानी हमेशा ही, अव्याबाध अक्षय सुखादि अनंत गुणों के आधारभूत यह जो केवल ज्ञान गुण है उस प्रमाण यह आत्मा है। नानम गेय प्रमाणमा उद्दिष्टम दाह्य निष्ठ दहनवत ज्ञानम गेय प्रमाणम उद्दिष्टम यानी कथितम। दाह्य निष्ठ दहन के समान ज्ञान है, वह गेय प्रमाण बताया गया है। नेयम लोया लोयम गेयम लोकालोकम भवति, गेय क्या है, लोक अलोक सब कुछ गेय है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव सर्व प्रकार उपादेय भूत परमात्म द्रव्यादि द्रव्यदि हुआ है, षड द्रव्यात्मको लोक है, द्रव्यादि करना। क्या कहते हैं, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव सर्व प्रकार से उपादेय भूत, ऐसे परमात्मा द्रव्य से लेकर द्रव्यादि, यानी पहले अपने को रखा परमात्मा द्रव्य में स्वयं, आदि षड द्रव्यात्मक लोक है, छह द्रव्यों का समूह लोक है। लोकांत बहिर्भागे शुद्ध आकाशम अलोकः, और लोक से बाह्य में शुद्ध जो अकेला आकाश है उसको अलोक कहते हैं। तच्च लोकालोक द्वयम् वह लोकालोक द्वय स्वकीय स्वकीय अनंत पर्याय परिणति रूपेण अनित्यम अपि द्रव्यार्थिक नयन नित्यम। क्या कहते हैं, जिसको हम लोकालोक कहते हैं वो पर्याय की अपेक्षा अनित्य होने पर भी, अपनी अपनी पर्याय हो रही है ना, उसका परिणमन हो रहा है, उसकी अपेक्षा अनित्य होने पर भी वो तो द्रव्यार्थिक नय से, क्योंकि लोकालोक हमेशा हम उसको लोकालोक ही कहेंगे, नित्य स्वभाव की अपेक्षा से वो नित्य है। तम्मा नानम तो सर्वगयम यस्मात् निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग भावना बलेन उत्पन्नम यत केवल ज्ञानम। क्या कहते, पहले कारण बताते, यस्मात् यानी क्योंकि निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोग भावना के बल से उत्पन्न जो केवल ज्ञान है तत् टंकोत्कीर्ण आकार न्यायेन निरंतरम पूर्वोक्त गेयम जानाति। और वह क्या है? टंकोत्कीर्ण ने टाके में उकेरी हुई के समान निरंतर ये सब कुछ गेय जानता है, पूर्वोक्त ने लोकालोक को जानता है। तस्मात इसलिए व्यवहारेण तो ज्ञानम सर्वगतम मन्यते, व्यवहार से ज्ञान को सर्वगत कहते हैं। तथास्थितम एतद आत्मा ज्ञान प्रमाणम, ज्ञानम सर्वगतम चाहिए, सर्वगम नहीं सर्वगतम इति। तरह गया इसलिए यह नक्की हुआ या यह सिद्ध हुआ कि यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है। अब इस पर जो प्रवचन है वो कल पढ़ेंगे 26 पेज से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।